एक राजा। जब राजा दाऊद बूढ़ा हो गया और बहुत आयु में बढ़ गया, तो अदोनियाह ने स्वयं को आगे किया और कहा, मैं राजा बनूंगा। इसलिए उसने रथ और घोड़े तैयार किए और उसके आगे चलने के लिए 50 पुरुष तैयार किए। उसके पिता ने कभी यह पूछकर उसके साथ हस्तक्षेप नहीं किया था, तुम ऐसा व्यवहार क्यों करते हो। अदोनियाह ने योआब और एब्यातार याजक से बातचीत की और उन्होंने उसे अपना समर्थन दिया, परंतु सादोक याजक, यहोयादा का पुत्र बनायाह, नातान भविष्यद्वक्ता, शिमी, रेई और दाऊद का विशेष रक्षक अदोनियाह के साथ नहीं गए, परंतु उसने नातान भविष्यद्वक्ता या उसके भाई सुलैमान को निमंत्रित नहीं किया। तब नातान ने सुलैमान की माता बतशेबा से पूछा, क्या तूने नहीं सुना कि अदोनियाह हमारे प्रभु दाऊद को बताए बिना राजा बन गया है। तब बतशेबा उस वृद्ध राजा के पास गई और उससे कहा, हे मेरे प्रभु, तूने आप ही मुझसे शपथ खाई है कि तेरा पुत्र सुलैमान मेरे बाद राजा होगा और वह मेरी गद्दी पर बैठेगा, परंतु अब अदोनियाह राजा बन गया है। हे मेरे प्रभु राजा, सारे इसराइल की निगाहें तुझ पर लगी हैं कि तुझसे सीखें कि सिंहासन पर कौन बैठेगा। अन्यथा जैसे ही मेरा स्वामी राजा अपने पुरखाओं के साथ सो जाएगा, मैं और मेरा पुत्र सुलैमान अपराधियों के समान समझे जाएंगे। वह अभी राजा से बातें कर ही रही थी कि नातान भविष्यद्वक्ता ने आकर कहा, हे मेरे प्रभु राजा, क्या तूने घोषणा की है कि अदोनियाह तेरे बाद राजा होगा और वह तेरी गद्दी पर बैठेगा, परंतु मैं तेरा दास हूँ और सादोक याजक को और यहोयादा के पुत्र बनायाह को और तेरे दास सुलैमान को नहीं बुलाया। क्या मेरे प्रभु राजा ने ऐसा किया है और अपने कर्मचारियों को यह न बताया कि मेरे प्रभु राजा के बाद उसकी गद्दी पर कौन बैठेगा। राजा दाऊद ने कहा, याजक सादोक, नातान भविष्यद्वक्ता और यहोयादा के पुत्र बनायाह को बुलाओ। जब वे राजा के पास आए, तब उसने उनसे कहा, अबके प्रभु के सेवकों को संग ले जाओ और मेरे पुत्र सुलैमान को मेरे खच्चर पर चढ़ाकर गीहोन को ले जाओ। वहां सादोक याजक और नातान भविष्यद्वक्ता ने इसराइल का राजा होने के लिए उसका अभिषेक किया। नरसिंगा फूंको और चिल्लाओ, राजा सुलैमान जीवित रहे, तब तू उसके साथ ऊपर जाना और वह आकर मेरी गद्दी पर बैठे और मेरे स्यान पर राज्य करे। मैंने उसे इसराइल और यहूदा पर शासक नियुक्त किया है। तुरही बजाई गई और सभी लोग चिल्लाए, राजा सुलैमान जीवित रहे। जब अदोनियाह और सब अतिथि अपना भोज समाप्त कर रहे थे, योआब ने पूछा, नगर में इतने शोरगुल का क्या अर्थ है। योनातन ने उत्तर दिया, हमारे प्रभु राजा दाऊद ने सुलैमान को राजा बनाया है। इस पर अदोनियाह के सब अतिथि घबराकर तितर बितर हो गए, परंतु अदोनियाह ने जाकर सुलैमान के सींगों को पकड़ लिया। तब सुलैमान को यह समाचार मिला कि अदोनियाह राजा सुलैमान से डरता है और उसके सींगों से चिपका रहता है। वेदी कहती है, राजा सुलैमान आज मुझसे शपथ खाए कि वह अपने दास को तलवार से न मार डालेगा। सुलैमान ने उत्तर दिया, यदि वह अपने आप को योग्य पुरुष दिखाए तो उसके सिर का एक बाल भी भूमि पर न गिरेगा, परंतु यदि उसमें बुराई पाई जाए तो वह मार डाला जाएगा। तब राजा सुलैमान ने पुरुष भेजे और वे उसे वेदी पर से नीचे उतार लाए और अदोनियाह ने आकर राजा सुलैमान को दंडवत किया और सुलैमान ने कहा, अबके घर को जा। दाऊद ने सुलैमान को आज्ञा दी, इसलिए मजबूत बनो, अपने आप को एक आदमी दिखाओ और जो कुछ तुम्हारा परमेश्वर यहोवा चाहता है उसका पालन करो, उसके तरीकों पर चलो और उसके नियमों और आज्ञाओं, उसके कानूनों और आवश्यकताओं का पालन करो, जैसा कि मूसा के कानून में लिखा है, ताकि तुम समृद्ध हो सको। तुम सब कुछ करते हो और जहां भी जाते हो और प्रभु मुझसे अपना वादा निभा सकते हैं, यदि आपके वंशज यह देखते हैं कि वे कैसे रहते हैं और यदि वे अपने पूरे दिल और आत्मा से मेरे सामने ईमानदारी से चलते हैं, तो आप कभी भी एक आदमी को पाने में असफल नहीं होंगे। इसराइल का सिंहासन। अब तो आप ही जानता है कि योआब ने मेरे साथ क्या किया, अपनी बुद्धि के अनुसार उसके साथ व्यवहार करना, परंतु उसके पके हुए सिर को शांति से अधोलोक में जाने न देना। परंतु गिलाद के बर्जिल्लै के पुत्रों पर कृपा करना और वे तेरी मेज पर खाने वालों में से ठहरें। जब मैं तेरे भाई अबशालोम के सामने से भागा तब वे मेरे पास खड़े रहे। शिमी को स्मरण करो जिसने मुझे कटु शाप दिया था। आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं, तुम्हें पता चल जाएगा कि उसके साथ क्या करना है। उसके भूरे सिर को खून से लथपथ कब्र में ले आओ। तब दाऊद अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसे दाऊदपुर में मिट्टी दी गई। उसने इसराइल पर 40 वर्ष, हेब्रोन में 7 वर्ष और यरूशलेम में 33 वर्ष तक राज्य किया। यहोवा ने एली के घराने के विषय में शीलो में जो वचन कहा था उसे पूरा करते हुए सुलेमान ने एब्यातार को यहोवा के याजक पद से हटा दिया। हालांकि लोग अभी भी ऊंचे स्थानों पर बलिदान दे रहे थे क्योंकि भगवान के नाम के लिए अभी तक कोई मंदिर नहीं बनाया गया था। शुरुआत में सुलेमान ने अपने पिता दाऊद की विधियों के अनुसार चलकर प्रभु के प्रति अपना प्रेम दिखाया, सिवाय इसके कि उसने ऊंचे स्थानों पर बलिदान चढ़ाए और धूप जलाई। राजा बलि चढ़ाने के लिए गिबोन को गया। वहां रात को यहोवा ने स्वप्न में सुलेमान को दर्शन दिया और परमेश्वर ने कहा, जो कुछ तू चाहता है कि मैं तुझे दूं वह मांग ले। सुलेमान ने उत्तर दिया, तूने अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी कृपा की है क्योंकि वह तेरे प्रति विश्वासयोग्य, धर्मी और सीधा हृदय वाला था। तूने उस पर यह बड़ी कृपा की है और आज ही के दिन उसे एक पुत्र देकर गद्दी पर बैठाया है। इसलिए अपने सेवक को अपने लोगों पर शासन करने और सही और गलत के बीच अंतर करने के लिए एक समझदार दिल दें। क्योंकि तुम्हारी इस महान प्रजा पर शासन कौन कर सकता है? भगवान प्रसन्न हुए इसलिए उन्होंने कहा, चूंकि तुमने यह मांगा है और अपने लिए लंबी उम्र या धन नहीं मांगा है, नहीं अपने दुश्मनों की मौत मांगी है बल्कि न्याय करने में विवेक मांगा है, इसलिए मैं वही करूंगा जो तुमने मांगा है। मैं तुझे बुद्धिमान और समझदार हृदय दूंगा, यहां तक कि तेरे तुल्य न कभी कोई हुआ होगा और न कभी होगा। इसके अलावा मैं तुम्हें वह दूंगा जो तुमने नहीं मांगा, धन और सम्मान दोनों, ताकि तुम्हारे जीवनकाल में राजाओं के बीच तुम्हारी कोई बराबरी न कर सके। और यदि तू अपने पिता दाऊद की नाई मेरे मार्गों पर चले और मेरी विधियों और आज्ञाओं को माने तो मैं तुझे लंबी आयु दूंगा। तब सुलेमान जाग गया और उसे मालूम हुआ कि यह एक स्वप्न था। परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि और बहुत बड़ी अंतर्दृष्टि दी और समझ की सीमा समुद्र के किनारे की रेत के समान अनंत थी। सुलेमान की बुद्धि पूर्व के सब मनुष्यों की बुद्धि से और मिस्र की सारी बुद्धि से बढ़कर थी। सभी राष्ट्रों के लोग सुलेमान की बुद्धिमत्ता को सुनने के लिए आए, जिसे दुनिया के सभी राजाओं ने भेजा था जिन्होंने उसकी बुद्धि के बारे में सुना था। जब सोर के राजा हीराम ने सुना कि सुलेमान का अभिषेक राजा के रूप में किया गया है तो उसने सुलेमान के पास अपने दूत भेजे, क्योंकि उसका दाऊद के साथ सदैव मित्रतापूर्ण संबंध रहा था। सुलेमान ने सोर के राजा हीराम से कहा, इसलिए मैं अपने परमेश्वर यहोवा के नाम के लिए एक मंदिर बनाने का इरादा रखता हूँ। जब हीराम ने सुलेमान का संदेश सुना तो वह बहुत प्रसन्न हुआ और कहा, आज यहोवा की स्तुति करो क्योंकि उसने दाऊद को इस महान राष्ट्र पर शासन करने के लिए एक बुद्धिमान पुत्र दिया है। हीराम ने सुलेमान को संदेश भेजा, तुम्हारा भेजा संदेश मुझे मिल गया है और देवदार की लकड़ियां प्रदान करने के लिए मैं वह सब करूंगा जो तुम चाहते हो। इस प्रकार हीराम ने सुलेमान को उसकी इच्छानुसार सभी देवदार और देवदार की लकड़ियां प्रदान की और सुलेमान ने हीराम को उसके परिवार के भोजन के रूप में 20,000 कोर गेहूं और 20,000 स्नान जैतून का तेल भी दिया। सुलेमान हीराम के लिए वर्ष प्रति वर्ष ऐसा करता रहा। यहोवा ने सुलेमान को बुद्धि दी जैसा उसने उससे वादा किया था। हीराम और सुलेमान के बीच शांतिपूर्ण संबंध थे और उन दोनों ने एक संधि की। यहोवा का यह वचन सुलेमान के पास पहुंचा कि यह मंदिर जो तू बना रहा है, यदि तू मेरी विधियों पर चले और मेरे नियमों को माने और मेरी सब आज्ञाओं को माने और उनका पालन करे, तो जो वचन मैंने दाऊद को दिया था उसे मैं तेरे द्वारा पूरा करूंगा पिता, और मैं इसराइलियों के बीच में रहूंगा और अपनी प्रजा इसराइल को न त्यागूंगा। आंतरिक पवित्र स्थान में उसने जैतून की लकड़ी के करूबों का एक जोड़ा बनाया, प्रत्येक 10 हाथ ऊंचा, 1 घन 18 इंच। उसने करूबों को पंख फैलाकर मंदिर के भीतरी कक्ष में रख दिया। एक करूब का पंख एक दीवार को छू गया, जबकि दूसरे का पंख दूसरी दीवार को छू गया, और उनके पंख कमरे के बीच में एक दूसरे को छू गए। उसने करूबों को सोने से मढ़ा। हालांकि सुलेमान को अपने महल का निर्माण पूरा करने में 13 साल लगे। उसने लेबनान के जंगल का महल 100 हाथ लंबा, 50 चौड़ा और 30 ऊंचा बनाया, जिसमें देवदार के खंभों की 4 पंक्तियां थीं जो छंटे हुए देवदार के बीमों को सहारा दे रही थीं। इसकी छत स्तंभों पर टिकी हुई बीमों के ऊपर देवदार से बनाई गई थी, 45 बीम 1 पंक्ति में 15। इसकी खिड़कियां एक दूसरे के सामने 3-3 के सेट में ऊंची रखी गई थीं। सभी दरवाजों में आयताकार चौखटें थीं, वे 3-3 के सेट में सामने वाले हिस्से में एक दूसरे के आमने सामने थे। 1 राजा 7:1-5। संकलक की टिप्पणी, सुलेमान ने बेहतरीन चीजें बनाई। न्याय कक्ष जहां उन्हें न्याय करना था। उसकी पत्नी फिरौन की बेटी के लिए एक शानदार महल। वह मंदिर के लिए पीतल के 2 खंभे बनाए, प्रत्येक की ऊंचाई 18 हाथ और चारों ओर 12 हाथ। स्तंभों के शीर्ष पर 2 कांस्य राजधानियां और आपस में गुंथी हुई जंजीरों का एक जाल। ढली हुई धातु का समुद्र जो 12 बैलों पर खड़ा था। कांसे के 10 चल खंभे थे, प्रत्येक खंभे के पार्श्व फलकों पर सिंह, बैल, करूब और बहुत सी अलंकृत वस्तुएं बनी हुई थीं। टिप्पणियां समाप्त करें। सुलेमान ने यहोवा के मंदिर का सारा सामान भी बनाया, सोने की वेदी, सोने की मेज जिस पर भेंट की रोटी रखी हुई थी, शुद्ध सोने के दीवट और सोने के फूल वाले दीवट और चिमटे, सोने के कटोरे, बाती की सजावट के उपकरण, छिड़काव के कटोरे, बर्तन और धूपदान, और मंदिर के द्वारों के भीतरी कमरे, परम पवित्र स्थान और मुख्य भवन के द्वारों के लिए सोने की कुर्सियां लगाई गईं। जब मंदिर का सारा काम पूरा हो गया, तब वह अपने पिता दाऊद की अर्पण की हुई वस्तुएं, चांदी, सोना और साज सामान ले आया और उन्हें यहोवा के मंदिर के भंडारों में रख दिया। तब राजा सुलेमान ने यरूशलेम में इसराइल के पुरनियों, गोत्रों के सब मुख्य पुरुषों और इसराइली कुलों के मुख्य पुरुषों को अपने सम्मुख बुलाया कि यहोवा की वाचा का संदूक दाऊद के नगर सियोन से ले आएं। जब इसराइल के सब पुरनिये आ गए, तब याजकों ने संदूक को उठाया और मिलाप वाले तंबू और उसमें के सारे पवित्र सामान को मंदिर में ले आए। राजा सुलेमान और इसराइल की सारी सभा इतनी भेड़बकरियों और मवेशियों की बलि चढ़ा रही थी कि उन्हें दर्ज़या गिना नहीं जा सका। तब याजकों ने यहोवा की वाचा के संदूक को मंदिर के भीतरी पवित्र स्थान अर्थात परम पवित्र स्थान में उसके स्थान पर ले आए और करूबों के पंखों के नीचे रख दिया। संदूक में पत्थर की उन 2 पटियाओं को छोड़ और कुछ न था जो मूसा ने होरेब में उसमें रखवाई थीं, जहां यहोवा ने इसराइलियों के मिस्र से निकलने के बाद उनके साथ वाचा बांधी थी। जब याजक पवित्र स्थान से हट गए, तो बादल यहोवा के मंदिर में भर गया। बादल के कारण याजक अपनी सेवा नहीं कर सके, क्योंकि यहोवा का तेज उसके मंदिर में भर गया था। तब सुलेमान ने कहा, यहोवा ने कहा है कि वह काले बादल में निवास करेगा, मैंने सचमुच तुम्हारे लिए एक भव्य मंदिर और सदा रहने के लिए एक स्थान बनाया है। कंपाइलर की टिप्पणी, माउंट सियोन यरूशलेम को बनाने वाली पहाड़ियों में से एक है, जिसमें माउंट मोरिया, टेंपल माउंट और शामिल हैं जैतून का पहाड़। टिप्पणी समाप्त करें। सुलेमान इसराइल की सारी सभा के सामने यहोवा की वेदी के सामने खड़ा हुआ और अपने हाथ स्वर्ग की ओर फैलाकर कहा, हे यहोवा इसराइल के परमेश्वर, तेरे तुल्य कोई परमेश्वर न ऊपर स्वर्ग में और न नीचे पृथ्वी पर है, जो तेरे सेवकों के साथ तेरी प्रेम की वाचा को निभाते हैं, वे पूरे मन से तेरे मार्ग पर चलते रहते हैं। तूने अपने दास दाऊद से किया हुआ वचन पूरा किया है, तू अपने दास की बिनती और अपनी प्रजा इसराइल की बिनती की ओर आंखें खुली रखे, और जब वे तेरी दोहाई दें, तब तू उनकी सुन, क्योंकि तूने उन्हें जगत की सब जातियों में से अपना निज निज भाग होने के लिए अलग कर लिया है, जैसा तूने अपने दास मूसा के द्वारा उस समय कहाया, जब हे प्रभु यहोवा, तू हमारे पुरखाओं को मिस्र से निकाल लाया। जब सुलेमान ने यहोवा का मंदिर और राजमहल बनाना पूरा कर लिया और जो कुछ वह करना चाहता था उसे पूरा कर लिया, तो यहोवा ने उसे दूसरी बार दर्शन दिया, जैसे उसने गिबोन में उसे दर्शन दिया था। प्रभु ने उससे कहा, मैंने वह प्रार्थना और विनती सुनी है जो तुमने मेरे सामने की थी, मैंने इस मंदिर को जिसे तुमने बनाया था अपना नाम हमेशा के लिए वहां रखकर पवित्र कर दिया है, मेरी आंखें और मेरा दिल हमेशा वहां रहेंगे। जैसा कि यदि तू अपने पिता दाऊद की नाई मेरे सामने मन की खराई और सीधाई से चले और मेरी सब आज्ञाओं को माने और मेरी विधियों और व्यवस्थाओं का पालन करे, तो मैं इसराइल पर तेरी राजगद्दी सदा के लिए स्थिर रखूंगा, जैसा कि मैंने तेरे पिता दाऊद से वचन दिया था। मैंने कहा, इसराइल के सिंहासन पर किसी व्यक्ति को बिठाने में आप कभी असफल नहीं होंगे, परंतु यदि तुम व तुम्हारे लड़के बाले मुझसे फिर जाएं और जो आज्ञाएं और नियम मैंने तुम्हें दिए हैं उनको न माने और पराए देवताओं की उपासना करके उनको दंडवत करें, तो मैं इसराइल को उस देश में से जो मैंने उनको दिया है नाश करूंगा और करूंगा इस मंदिर को अस्वीकार करो जिसे मैंने अपने नाम के लिए पवित्र किया है। तब इसराइल सब लोगों के बीच उपहास और उपहास का पात्र बन जाएगा। और यद्यपि यह मंदिर अब भव्य हो गया है, तो भी वहां से गुजरने वाले सब चकित हो जाएंगे और उपहास करके कहेंगे, यहोवा ने इस देश और इस मंदिर के साथ ऐसा क्यों किया है। लोग उत्तर देंगे, चूंकि उन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा को जो उनके पुरखाओं को मिस्र से निकाल लाया था त्याग दिया है और पराए देवताओं को अपना लिया है और उनकी उपासना और सेवा करते हैं, इसी कारण यहोवा ने उन पर यह सब विपत्ति डाली है। संकलक की टिप्पणी। 70 ईस्वी में जब रोम ने यरूशलेम और मंदिर को नष्ट कर दिया, तो इसराइल एक उपनाम और उपहास की वस्तु बन गया। टिप्पणियां समाप्त करें। हालांकि राजा सुलेमान फिरौन की बेटी, मोआबियों, अम्मोनियों, एदोमियों, सीदोनियों और हित्तियों के अलावा कई विदेशी महिलाओं से प्यार करता था, वे उन जातियों में से थे जिनके विषय में यहोवा ने इसराइलियों से कहा था कि तुम उनके साथ विवाह न करना, क्योंकि वे निश्चय तुम्हारे मन को अपने देवताओं की ओर फेर देंगे। फिर भी सुलेमान ने प्रेम से उन्हें थामे रखा। उसके शाही वंश की 700 पत्नियां और 300 रखैले थीं, और उसकी पत्नियों ने उसे भटका दिया था। यहोवा सुलेमान पर क्रोधित हुआ, क्योंकि उसका मन इसराइल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया था, जिसने उसे दो बार दर्शन दिए थे। हालांकि उसने सुलेमान को अन्य देवताओं का अनुसरण करने से मना किया था, फिर भी सुलेमान ने प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं किया। इसलिए यहोवा ने सुलेमान से कहा, चूंकि यह तुम्हारा रवैया है और तुमने मेरी वाचा और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया है जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, मैं निश्चित रूप से राज्य को तुमसे छीन लूंगा और इसे तुम्हारे अधीनस्थों में से एक को दे दूंगा। फिर भी तेरे पिता दाऊद के निमित्त मैं तेरे जीते जी ऐसा न करूंगा और तेरे पुत्र के हाथ से मैं उसको छीन लूंगा, तो भी मैं उससे सारा राज्य न छीन लूंगा, वरन एक गोत्र उसे दे दूंगा मेरे दास दाऊद के लिए और यरूशलेम के लिए, जिसे मैंने चुना है। तब यहोवा ने सुलेमान के विरुद्ध एदोमी हदद और एलीदा के पुत्र रजोन नामक एक शत्रु को खड़ा किया। इसके अलावा नबात के पुत्र यारोबाम ने राजा के विरुद्ध विद्रोह किया। वह सुलेमान के अधिकारियों में से एक था। लगभग उसी समय यारोबाम यरूशलेम से बाहर जा रहा था और शीलो का भविष्यद्वक्ता अहियाह नया वस्त्र पहने हुए मार्ग में उसे मिला। वे दोनों बाहर देश में अकेले थे और अहियाह ने जो नया कपड़ा पहना हुआ था उसे पकड़कर उसके 12 टुकड़े कर दिए। तब उसने यारोबाम से कहा, अपने लिए 10 टुकड़े ले ले, क्योंकि इसराइल का परमेश्वर यहोवा यों कहता है, देख मैं राज्य को सुलैमान के हाथ से छीनकर तुझे 10 गोत्र दे देता हूँ। अपने दास दाऊद और यरूशलेम नगर के कारण, जिसे मैंने इसराइल के सब गोत्रों में से चुन लिया है, उसका एक गोत्र रखूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे त्याग कर अश्तोरेत नाम सीदोनियों की देवी कमोश देवता की उपासना की है। मोआबियों में से और अम्मोनियों का देवता मोलेक और मेरे मार्गों पर नहीं चले, और न वह काम किया जो मेरी दृष्टि में ठीक है, और न दाऊद के समान मेरी विधियों और विधियों को माना। जहाँ तक तेरी यारोबाम की बात है, मैं तुझे ले लूंगा, और तू अपने मन की सब इच्छाओं पर प्रभुता करेगा, तू इसराइल का राजा होगा। यदि तुम वह सब करो जो मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, और मेरे मार्गों पर चलो, और मेरे दास दाऊद की नाई मेरी विधियों और आज्ञाओं को मानकर वही करो जो मेरी दृष्टि में ठीक है, तो मैं तुम्हारे संग रहूंगा। मैं तुम्हारे लिए वैसा ही स्थायी राजवंश बनाऊंगा जैसा मैंने दाऊद के लिए बनाया था, और इसराइल तुम्हें सौंप दूंगा। मैं इसके कारण दाऊद के वंशजों को नीचा दिखाऊंगा, परंतु हमेशा के लिए नहीं। सुलैमान ने यारोबाम को मारने का प्रयत्न किया, परंतु वह मिस्र के राजा शीशक के पास भाग गया, और सुलैमान की मृत्यु तक वहीं रहा। सुलैमान ने यरूशलेम में सारे इसराइल पर 40 वर्ष तक राज्य किया। उसका पुत्र रहुबियाम उसके बाद राजा बना। रहुबियाम शकेम को गया, क्योंकि सब इसराइली उसे राजा बनाने के लिए थे वहां गए थे। जब यारोबाम ने यह सुना, तो वह मिस्र से लौट आया। तब उन्होंने यारोबाम को बुलवाया, और वह इसराइल की सारी मंडली समेत रहुबियाम के पास जाकर कहने लगा, तेरे पिता ने हम पर भारी जुआ डाल रखा था, परंतु अब उस कठोर परिश्रम और उस भारी जुए को जो उसने हम पर डाला था हल्का कर दे, और हम आपकी सेवा करूंगा। रहुबियाम ने उत्तर दिया, 3 दिन के लिए चले जाओ और फिर मेरे पास लौट आओ। राजा रहुबियाम ने उन पुरनियों से परामर्श किया जिन्होंने उसके पिता सुलैमान के जीवन काल में उसकी सेवा की थी। उन्होंने उत्तर दिया, यदि आज तुम इन लोगों के सेवक बनकर उनकी सेवा करोगे और उन्हें अनुकूल उत्तर दोगे, तो वे सदैव तुम्हारे सेवक रहेंगे। परंतु रहुबियाम ने उस सलाह को अस्वीकार कर दिया जो पुरनियों ने उसे दी थी, परंतु उसने उन जवानों की सलाह मानी जिनके साथ वह बड़ा हुआ था। यह घटना यहोवा की ओर से हुई कि जो वचन यहोवा ने नबात के पुत्र यारोबाम से शिलोनी अहियाह के द्वारा कहाया, वह पूरा हो। जब सब इसराइल ने देखा कि राजा ने हमारी बात नहीं मानी, तो उन्होंने राजा को उत्तर दिया कि हम अपने घर चले गए। परंतु जो इसराइली यहूदा के नगरों में रहते थे, रहुबियाम उन पर फिर भी प्रभुता करता रहा। रहुबियाम ने इसराइल के घराने से युद्ध करने और राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए 180,000 योद्धा इकट्ठे किए। परंतु परमेश्वर का यह वचन परमेश्वर के भक्त शमायाह के पास पहुंचा, रहुबियाम और यहूदा और बिन्यामीन के सारे घराने से कह, यहोवा यों कहता है, अपने भाइयों अर्थात इसराइलियों से लड़ने को मत जाओ। तुम सब अपने घर जाओ, क्योंकि यह मेरा काम है। इसलिए उन्होंने प्रभु के वचन का पालन किया और प्रभु के आदेश के अनुसार फिर से घर चले गए। अब यारोबाम ने मन में सोचा, अब राज्य संभवतः दाऊद के घराने को मिल जाएगा। यदि ये लोग यरूशलेम में यहोवा के मंदिर में बलिदान चढ़ाने को जाएं, तो वे फिर अपने स्वामी यहूदा के राजा रहुबियाम के प्रति अपनी निष्ठा रखेंगे। वे मुझे मार डालेंगे और राजा रहुबियाम के पास लौट जाएंगे। इसलिए उसने 2 सोने के बछड़े बनवाए। उसने लोगों से कहा, तुम्हारे लिए यरूशलेम तक जाना कठिन है। हे इसराइल, तेरे देवता यही हैं, जो तुम्हें मिस्र से निकाल लाए। एक को उसने बेथेल में स्थापित किया और दूसरे को दान में। फिर उसने ऊंचे स्थानों पर मंदिर बनवाए और सभी प्रकार के लोगों से पुजारी नियुक्त किए और बेथेल में जो वेदी बनाई थी उस पर बलिदान चढ़ाए। शीघ्र ही परमेश्वर का एक जन यहूदा से बेथेल को आया, जब यारोबाम वेदी के पास भेंट चढ़ाने के लिए खड़ा था। उसने यहोवा के वचन के द्वारा वेदी के विरुद्ध चिल्लाकर कहा, हे वेदी, वेदी! यहोवा यूं कहता है, दाऊद के घराने में योशियाह नाम का एक पुत्र उत्पन्न होगा। वह ऊंचे स्थानों के याजकों को, जो अब यहाँ बलि चढ़ाते हैं, तुझ पर बलि चढ़ाएगा और मनुष्य की हड्डियाँ तुझ पर जलाई जाएंगी। यह वह चिन्ह है जिसे यहोवा ने घोषित किया है, वेदी टुकड़े टुकड़े कर दी जाएगी और उस पर राख डाली जाएगी। जब राजा यारोबाम ने यह सुना तो उसने वेदी पर से हाथ बढ़ाकर कहा, उसे पकड़ लो। परंतु जो हाथ उसने उस मनुष्य की ओर बढ़ाया वह सिकुड़ गया, यहाँ तक कि वह उसे वापस खींच न सका और वेदी को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया और उसकी राख परमेश्वर के जन द्वारा यहोवा के वचन के द्वारा दिए गए चिन्ह के अनुसार उंडेल दी गई। तब राजा ने परमेश्वर के भक्त से कहा, अब के परमेश्वर यहोवा से विनती करो और मेरे लिए प्रार्थना करो कि मेरा हाथ फिर ठीक हो जाए। तब परमेश्वर के भक्त ने यहोवा से विनती की और राजा का हाथ फिर से ज्यों का त्यों हो गया। राजा ने परमेश्वर के भक्त से कहा, मेरे साथ घर आओ और कुछ खाओ और मैं तुम्हें एक उपहार दूंगा। परंतु परमेश्वर के भक्त ने राजा को उत्तर दिया कि चाहे तू मुझे अपनी आधी संपत्ति भी दे तो भी मैं तेरे संग न चलूंगा और न यहाँ रोटी खाऊंगा और न पानी पीऊंगा, क्योंकि प्रभु के वचन से मुझे यह आज्ञा मिली कि न तो रोटी खाना न पानी पीना और न जिस मार्ग से आए हो उसी मार्ग से लौटना। इसलिए उसने दूसरा रास्ता अपनाया और जिस रास्ते से वह बेतेल आया था उस रास्ते से नहीं लौटा। बेतेल में एक बूढ़ा भविष्यद्वक्ता रहता था और उसके पुत्रों ने आकर उसे सब कुछ बता दिया जो परमेश्वर के भक्त ने उस दिन वहां किया था। उन्होंने अपने पिता को वह भी बताया जो उन्होंने राजा से कहा था। उनके पिता ने उनसे पूछा, वह किस ओर गया? और उसके पुत्रों ने उसे दिखाया कि यहूदा के परमेश्वर के भक्त ने कौन सा मार्ग अपनाया है। अत उसने अपने पुत्रों से कहा, मेरे लिथे गधे पर काठी काठी बांधो। और जब उन्होंने उसके लिए गधे पर काठी बांधी तब वह उस पर चढ़कर परमेश्वर के भक्त के पीछे चला। उसने उसे बांझ वृक्ष के नीचे बैठा पाया और पूछा, क्या तू परमेश्वर का वह जन है जो यहूदा से आया है? मैं हूं, उसने उत्तर दिया। तो भविष्यवक्ता ने उससे कहा, मेरे साथ घर आओ और खाओ। परमेश्वर के जन ने कहा, मैं पीछे मुड़कर तुम्हारे साथ नहीं जा सकता और न इस स्थान में तुम्हारे साथ रोटी खा सकता हूं और न पानी पी सकता हूं। यहोवा के वचन के द्वारा मुझे कहा गया है, तुम्हें रोटी नहीं खानी चाहिए और न ही पानी पीना चाहिए, या तो जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से लौट जाओ। बूढ़े भविष्यद्वक्ता ने उत्तर दिया, मैं भी तेरे समान भविष्यद्वक्ता हूँ और एक स्वर्गदूत ने यहोवा के वचन के द्वारा मुझसे कहा, उसे अपने साथ अपने घर ले आ कि वह रोटी खाए और पानी पिए। परंतु वह उससे झूठ बोल रहा था, इसलिए परमेश्वर का भक्त उसके साथ लौट आया और उसके घर में खाया पिया। संकलक की टिप्पणी, पॉल का कथन, परंतु यदि हम या स्वर्ग का कोई स्वर्गदूत उस सुसमाचार को छोड़कर जो हमने तुम्हें सुनाया है किसी और सुसमाचार का प्रचार करे तो वह सदा के लिए दोषी ठहराया जाए। गलातियों से टिप्पणी समाप्त करें। जब वे मेज पर बैठे थे तब यहोवा का संदेश उस बूढ़े भविष्यद्वक्ता के पास पहुंचा जो उसे वापस ले आया था। उसने परमेश्वर के उस जन से जो यहूदा से आया या चिल्लाकर कहा, यहोवा यूं कहता है, तुमने यहोवा के वचन की अवहेलना की है और जो आज्ञा तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दी थी उसका पालन नहीं किया। तुमने लौटकर उस स्थान में रोटी खाई और पानी पिया जहां उसने तुमसे कहा था कि न खाना न पीना, इसलिए तुम्हारा शव तुम्हारे पुरखाओं की कब्र में नहीं दफनाया जाएगा। जब परमेश्वर का जन खा पी चुका तो जो भविष्यद्वक्ता उसे वापस ले आया था उसने उसके लिए अपने गधे पर काठी बांधी। जब वह मार्ग पर जा रहा था तो मार्ग में एक सिंह उसे मिला और उसे मार डाला और उसका शव मार्ग पर फेंक दिया और गधा और सिंह दोनों उसके पास खड़े रहे। वहां से गुजरने वाले कुछ लोगों ने शव को नीचे फेंका हुआ देखा और शेर शव के पास खड़ा था और उन्होंने जाकर उस शहर में इसकी सूचना दी जहां बूढ़ा भविष्यवक्ता रहता था। जब उस भविष्यद्वक्ता ने, जो उसे यात्रा से लौटा ले आया था, यह सुना, तो कहा, यह वही परमेश्वर का जन है, जिसने यहोवा के वचन का उल्लंघन किया है। यहोवा ने उसे सिंह के वश में कर दिया है, जिसने उसे फाड़कर मार डाला है, जैसा कि यहोवा के वचन ने उसे चिताया था। भविष्यद्वक्ता ने अपने पुत्रों से कहा, मेरे लिए गधे पर काठी कसो, और उन्होंने वैसा ही किया। तब वह बाहर गया और सड़क पर एक शव गिरा हुआ पाया, और गधा और सिंह उसके पास खड़े थे। शेर ने न तो उसका शव खाया था और न ही गधे को मारा था। इसलिए भविष्यवक्ता ने परमेश्वर के भक्त के शरीर को उठाया, उसे गधे पर रखा, और उसके लिए शोक मनाने और उसे दफनाने के लिए उसे अपने शहर में वापस लाया। तब उसने उसके शव को अपनी कब्र में रखा, और वे उसके लिए विलाप करते हुए कहने लगे, हे मेरे भाई। संकलक की टिप्पणी, ईश्वर आज्ञाकारिता चाहता है। टिप्पणी समाप्त करें। इसके बाद भी यारोबाम ने अपना बुरा पश्चाताप तरीका नहीं बदला। अहियाह ने कहा, तूने अपने से पहले जितने जीवित रहे उन सबसे अधिक दुष्ट काम किया है। तूने अपने लिए पराए देवता और धातु की मूर्तें बना ली। तूने मुझे क्रोध दिलाकर अपनी पीठ के पीछे धकेल दिया है। इस कारण मैं यारोबाम के घराने पर विपत्ति लाने पर हूँ। मैं यारोबाम के वंश में से इसराइल के सब पुरुषों को, चाहे दास हो या स्वतंत्र, नाश कर डालूंगा। मैं यारोबाम के घराने को गोबर के समान तब तक जलाऊंगा जब तक वह सब नष्ट न हो जाए। यारोबाम के वंश के जो लोग नगर में मरेंगे उनको कुत्ते खा लेंगे, और जो कोई देश में मर जाएगा उसे आकाश के पक्षी खा लेंगे, प्रभु ने कहा है। यहूदा ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। उन्होंने हर एक ऊंचे पहाड़ पर और हर फैले हुए पेड़ के नीचे अपने लिए ऊंचे स्थान, पवित्र पत्थर और अशेरा नाम मूर्तियां स्थापित कीं। यहां तक कि देश में पुरुष तीर्थ वेश्याएं भी थीं। वे लोग उन जातियों के सब घृणित कामों में लगे हुए थे जिन्हें यहोवा ने इसराइलियों के सामने से निकाल दिया था। मिस्र के राजा शीशक ने यरूशलेम पर आक्रमण किया। वह यहोवा के मंदिर का खजाना उठा ले गया। रहुबियाम मर गया और उसे दाऊद के नगर में दफनाया गया। अबिय्याह यहूदा का राजा बना और उसने यरूशलेम में 3 वर्ष तक राज्य किया। आसा यहूदा का राजा हुआ और यरूशलेम में 41 वर्ष तक राज्य करता रहा। आसा ने वही किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, जैसा उसके पिता दाऊद ने किया था। उसने पुरुष तीर्थ वेश्याओं को भूमि से निष्कासित कर दिया और उन सभी मूर्तियों से छुटकारा पा लिया जो उसके पिता ने बनाई थीं। यहां तक कि उसने अपनी दादी माका को रानी माँ के पद से हटा दिया, क्योंकि उसने घृणित अशेरा खंभा बनवाया था। आसा ने खंभे को काट डाला और उसे किद्रोन घाटी में जला दिया। हालांकि उसने ऊंचे स्थानों को नहीं हटाया, फिर भी आसा का हृदय जीवन भर प्रभु के प्रति समर्पित रहा। वह यहोवा के मंदिर में चांदी, सोना और वे वस्तुएं ले आया जो उसने और उसके पिता ने समर्पित की थीं। यारोबाम के बाद अहाब तक इसराइल के राजा, सभी ने इसराइल से पाप करवाया। यारोबाम का पुत्र नादाब राजा हुआ। उसने 2 वर्ष तक शासन किया। बाशा ने नादाब को मार डाला और राजा बन गया। उसने यारोबाम के पूरे परिवार को मार डाला। उसने 24 वर्ष तक राज्य किया। उसका पुत्र एला उसके बाद राजा हुआ और 2 वर्ष तक राज्य करता रहा। जिम्री ने एला को मार डाला और 7 दिन तक राज्य किया। फिर उमरी ने जिम्री को घेर लिया, जिसने उसके महल को जला दिया और मर गया। उमरी ने सामरिया नामक एक नगर बसाया। उसने 12 वर्ष तक राज्य किया। अहाब उसका पुत्र राजा बना। उसने प्रभु की दृष्टि में अपने पहले के सभी लोगों से भी अधिक बुरा काम किया। उसने न केवल नबात के पुत्र यारोबाम के पाप करना तुच्छ समझा, वरन सीदोनियों के राजा एतबाल की बेटी इजेबेल से भी विवाह किया और बाल की उपासना और उपासना करने लगा और इसराइल के परमेश्वर यहोवा को क्रोधित किया। तिशबी एलियाह ने अहाब से कहा, इसराइल के परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ जिसकी मैं सेवा करता हूँ, मेरे कहने के बिना अगले कुछ वर्षों में न तो ओस होगी और न वर्षा होगी। तब यहोवा का यह वचन एलियाह के पास पहुँचा, यहाँ से निकल, पूर्व की ओर मुड़ और यर्दन के पूर्व केरीत घाटी में छिप जा। तुम नाले का पानी पियोगे और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुम्हें वहीं पिलाएं। इसलिए उसने वही किया जो प्रभु ने उससे कहा था। वह यर्दन के पूर्व में केरीत घाटी में गया और वहीं रहा। भोर को कौवे उसके लिए रोटी और मांस और सांझ को रोटी और मांस लाते थे और वह नाले से पानी पीता था। कुछ समय बाद नाला सूख गया क्योंकि देश में वर्षा नहीं हुई थी। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा कि तुरंत सीदोन के सारपत को जा और वहीं रह। मैंने उस स्थान की एक विधवा को तुम्हें भोजन देने की आज्ञा दी है। अत वह सारपत को गया। जब वह नगर के फाटक पर आया तो एक विधवा लकड़ियां बीन रही थी। उसने उसे बुलाया और पूछा, क्या तुम मेरे लिए एक घड़े में थोड़ा पानी लाओगी ताकि मैं पी सकूं? जैसे ही वह उसे लेने जा रही थी, उसने पुकारा, कृपया मेरे लिए रोटी का एक टुकड़ा लाओ। तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, उसने उत्तर दिया, मेरे पास रोटी नहीं है, केवल एक घड़े में मुट्ठी भर आटा और एक जग में थोड़ा सा तेल है। मैं घर ले जाने और बनाने के लिए कुछ लकड़ियां इकट्ठा कर रही हूँ। अपने और अपने बेटे के लिथे भोजन करो कि हम उसे खाएं और मर जाएं। एलियाह ने उससे कहा, मत डर, और जैसा तूने कहा है वैसा ही कर, परंतु पहले मेरे लिथे एक छोटी रोटी बना, जो कुछ तुम्हारे पास हो उसे मेरे पास ले आओ, और फिर अपने और अपने बेटे के लिए कुछ बनाना, क्योंकि इसराइल का परमेश्वर यहोवा यों कहता है कि आटे का कुप्पी समाप्त न होगा और कुप्पी का तेल भी न बुझेगा। उस दिन तक सूखा रहेगा जब तक यहोवा भूमि पर वर्षा न करेगा। कुछ समय बाद उस महिला का बेटा, जो घर की मालिक थी, बीमार हो गया। उसकी हालत और भी खराब हो गई और अंततः उसने सांस लेना बंद कर दिया। उसने एलियाह से कहा, हे परमेश्वर के भक्त, तुझे मुझसे क्या शिकायत है? क्या तुम मुझे मेरे पाप की याद दिलाने और मेरे बेटे को मारने आए हो? एलियाह ने उत्तर दिया, मुझे अपना पुत्र दो। वह उसे उसकी गोद से ले गया, उसे ऊपरी कमरे में ले गया जहां वह रह रहा था, और उसे अपने बिस्तर पर लिटा दिया। तब उसने यहोवा की दोहाई दी, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, क्या तूने इस विधवा के पुत्र को मरवाकर, जिसके पास मैं रहता हूँ उस पर भी विपत्ति डाली है? तब वह लड़के के ऊपर तीन बार लेट गया और यहोवा से प्रार्थना की, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, इस लड़के का जीवन उसे लौटा दे। यहोवा ने एलियाह की पुकार सुनी और लड़के का प्राण लौट आया और वह जीवित हो गया। एलियाह ने बच्चे को उठाया और कमरे से नीचे घर में ले गया। उसने उसे उसकी माता को सौंप कर कहा, देख, तेरा पुत्र जीवित है। तब स्त्री ने एलियाह से कहा, अब मैं जान गई हूँ कि तू परमेश्वर का जन है और यहोवा का जो वचन तेरे मुंह से निकलता है वह सत्य है। यहोवा का यह वचन एलियाह के पास पहुँचा, जाओ और अपने आप को अहाब के पास प्रस्तुत करो और मैं भूमि पर मेह बरसाऊंगा। अत एलियाह अपने आप को अहाब के सामने प्रस्तुत करने गया। जब उसने एलियाह को देखा तब उससे कहा, हे इसराइल को उपद्रव कराने वाले, क्या वह तू है? एलियाह ने उत्तर दिया, मैंने इसराइल के लिए समस्या खड़ी नहीं की है, लेकिन आपके और आपके पिता के परिवार के पास है। तुमने यहोवा की आज्ञाओं को त्याग दिया है और बाल देवताओं के पीछे हो गए हो। अब सारे इसराइल से लोगों को कर्मेल पर्वत पर मुझसे मिलने के लिए बुलाओ, और बाल के 450 नबियों और अशेरा के 400 नबियों को, जो ईजेबेल की मेज पर खाते हैं, ले आओ। इसलिए अहाब ने सारे इसराइल में संदेश भेजा और नबियों को कर्मेल पर्वत पर इकट्ठा किया। एलियाह ने लोगों के सामने जाकर कहा, तुम कब तक दो मतों के बीच डोलते रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर है तो उसके पीछे हो लो, परंतु यदि बाल परमेश्वर है तो उसके पीछे हो लो। परंतु लोगों ने कुछ नहीं कहा। संकलक की टिप्पणी, उन्होंने चुप रहकर चुनाव किया। टिप्पणी समाप्त करें। तब एलियाह ने उनसे कहा, यहोवा के भविष्यद्वक्ताओं में से केवल मैं ही बचा हूँ, परंतु बाल के पास 450 भविष्यद्वक्ता हैं। हमारे लिए 2 बैल ले आओ। वे अपने लिए एक चुन लें और उसे टुकड़े टुकड़े करके लकड़ी पर रख दें, परंतु आग न लगाएं। मैं दूसरे बैल को तैयार करके लकड़ी पर रख दूंगा, परंतु आग नहीं लगाऊंगा। तब तुम अपने परमेश्वर से प्रार्थना करना और मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा। वह ईश्वर जो आग से उत्तर देता है, वह ईश्वर है। तब सब लोगों ने कहा, आप जो कहते हैं वह अच्छा है। अत उन्होंने अपना दिया हुआ बैल ले लिया और उसे तैयार किया। तब वे भोर से दोपहर तक बाल का नाम लेते रहे। हे बाल, हमें उत्तर दे, उन लोगों ने चिल्लाया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, किसी ने जवाब नहीं दिया। दोपहर के समय एलियाह उन्हें चिढ़ाने लगा। जोर से चिल्लाओ, उसने कहा, निश्चय ही वह एक देवता है। शायद वह किसी गहरे विचार में है, या व्यस्त है, या यात्रा कर रहा है। शायद वह सो रहा है और उसे जगाना होगा। अत वे और जोर से चिल्लाने लगे और अपनी रीति के अनुसार तलवारों और भालों से अपने आप को तब तक काटते रहे जब तक कि उनका खून न बहने लगा। दोपहर बीत गई और वे शाम के बलिदान के समय तक अपनी उन्मत्त भविष्यवाणी करते रहे, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, किसी ने उत्तर नहीं दिया, किसी ने ध्यान नहीं दिया। तब एलियाह ने यहोवा की वेदी की, जो खंडहर हो गई थी, मरम्मत की। उसने 12 पत्थर लिए, प्रत्येक गोत्र के लिए एक, और यहोवा के नाम पर एक वेदी बनाई। उसने उसके चारों ओर एक बड़ी खाई खोदी, लकड़ी की व्यवस्था की, बैल को टुकड़ों में काटा और लकड़ी पर रख दिया। तब उसने उनसे कहा, 4 बड़े घड़े जल से भर लो और चढ़ावे पर और लकड़ी पर डाल दो। उन्होंने ऐसा 3 बार किया, यहां तक कि जल वेदी के चारों ओर से बहकर खाई में भर गया। बलिदान के समय भविष्यवक्ता एलिजा ने आगे बढ़कर प्रार्थना की, हे भगवान इब्राहिम, इसहाक और इसराइल के भगवान, आज यह जान लें कि आप इसराइल में भगवान हैं और मैं आपका सेवक हूं और मैंने आपके आदेश पर ये सभी चीजें की हैं। हे प्रभु, मुझे उत्तर दे, मुझे उत्तर दे, ताकि ये लोग जान लें कि हे प्रभु, तू ही परमेश्वर है और तू उनके हृदयों को फिर से फेर देता है। तब यहोवा की आग भड़क उठी और यज्ञ, लकड़ी, पत्थर और मिट्टी सब कुछ भस्म हो गया और गढ़े का जल भी सो गया। जब सब लोगों ने यह देखा तो दंडवत होकर गिर पड़े और चिल्लाकर कहने लगे, यहोवा ही परमेश्वर है, प्रभु वह भगवान है। तब एलियाह ने उन्हें आज्ञा दी कि बाल के नबियों को पकड़ लो, किसी को भी दूर मत जाने दो। उन्होंने उन्हें पकड़ लिया और वहीं मार डाला। तब एलियाह ने अहाब से कहा, जाकर खाओ और पियो, क्योंकि भारी वर्षा का स्वर है। अहाब खाने पीने चला गया, परंतु एलियाह कर्मेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर झुककर अपना मुंह उसके घुटनों के बीच रख दिया। जाओ और समुद्र की ओर देखो, उसने अपने नौकर से कहा, और उसने ऊपर जाकर देखा, वहां कुछ भी नहीं है, उसने कहा। एलियाह ने 7 बार कहा, वापस जाओ। 7वीं बार सेवक ने समाचार दिया, एक मनुष्य के हाथ के बराबर छोटा बादल समुद्र से उठ रहा है। एलियाह ने कहा, जाओ और अहाब से कहो, अपना रथ खड़ा करो और बारिश रुकने से पहले नीचे जाओ। इस बीच आकाश बादलों से काला हो गया, हवा बढ़ गई, भारी बारिश होने लगी और अहाब यिज्रायल की ओर चला गया। यहोवा की शक्ति एलियाह पर आ गई और वह अपना लबादा कमर में बांधकर पूरे रास्ते अहाब के आगे आगे दौड़ता रहा। यिज्रायल को अहाब ने इजेबेल को वह सब कुछ बताया जो एलियाह ने किया था और कैसे उसने सभी भविष्यवक्ताओं को तलवार से मार डाला था। इजेबेल ने एलियाह के पास यह कहने के लिए एक दूत भेजा, यदि कल इस समय तक मैं तुम्हारा जीवन उनमें से किसी एक के समान न कर दूं, तो देवता मेरे साथ चाहे चाहे कितनी भी कठोरता से व्यवहार करें। एलिय्याह डर गया और अपनी जान बचाने के लिए भागा। जब वह यहूदा के बेर्शेबा में आया, तब उसने अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया और आप जंगल में एक दिन की यात्रा पर चला गया। वह एक झाड़ू के पेड़ के पास आया, उसके नीचे बैठ गया और प्रार्थना की कि वह मर जाए। उन्होंने कहा, मुझे बहुत हो गया प्रभु, मेरी जान ले, मैं अपने पूर्वजों से बेहतर नहीं हूँ। फिर वह पेड़ के नीचे लेट गया और सो गया। अचानक एक स्वर्गदूत ने उसे छूकर कहा, उठो और खाओ। उसने चारों ओर देखा और उसके सिरहाने गर्म अंगारों पर पकी हुई रोटी का एक केक और पानी का एक घड़ा रखा हुआ था। उसने खाया पिया और फिर लेट गया। प्रभु का दूत दूसरी बार वापस आया और उसे छूकर कहा, उठो और खाओ, क्योंकि यात्रा तुम्हारे लिए बहुत कठिन है। अत वह उठा और खाया पिया। उस भोजन से बल पाकर वह 40 दिन और 40 रात चलता रहा और परमेश्वर के पर्वत होरेब तक पहुंचा। वहां वह एक गुफा में चला गया और रात बिताई। संकलक की टिप्पणी, प्रभु प्रदान करता है। टिप्पणी समाप्त करें। यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, एलिय्याह तू यहां क्या कर रहा है? यहोवा ने कहा, बाहर जाओ और यहोवा के सामने पहाड़ पर खड़े रहो, क्योंकि यहोवा वहां से गुजरने वाला है। एक तेज और शक्तिशाली हवा ने पहाड़ों को तोड़ दिया, भगवान वहां नहीं थे। फिर एक भूकंप आया, भगवान वहां नहीं थे, आग में नहीं। तभी एक हल्की सी फुसफुसाहट हुई जो उसने फिर से कहा, एलिय्याह तुम यहां क्या कर रहे हो? उसने उत्तर दिया, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लिए बहुत जोशीला रहा हूँ। इसराइलियों ने तेरी वाचा को तुच्छ जाना, तेरी वेदियों को तोड़ डाला और तेरे भविष्यद्वक्ताओं को तलवार से घात किया है। मैं अकेला बचा हूँ और अब वे मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। यहोवा ने उससे कहा, जिस मार्ग से तू आया है उसी मार्ग से लौट जा और दमिश्क के जंगल में जा। जब तुम वहां पहुंचोगे तो अराम के राजा हजाएल का अभिषेक करना और निमशी के पुत्र येहू का इसराइल का राजा होने के लिए अभिषेक करो और शापात के पुत्र एलीशा का अपने उत्तराधिकारी के रूप में भविष्यद्वक्ता होने के लिए अभिषेक करो। जो कोई हजाएल की तलवार से बचेगा उसे येहू मार डालेगा और जो कोई येहू की तलवार से बचेगा उसे एलीशा मार डालेगा। तो भी मैंने इसराइल में 7,000 पुरुष बचाए रखे हैं, वे सब के सब जिन्होंने न बाल के आगे घुटने टेके और न मुंह से उसे चूमा है। संकलक की टिप्पणी, भय और आत्मद्या शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से कई समस्याओं का कारण बनते हैं। टिप्पणी समाप्त करें। तब एलिय्याह वहां से चला गया और शापात के पुत्र एलीशा को पाया। वह 12 जोड़ी बैलों से जुताई कर रहा था और 12वीं जोड़ी को वह स्वयं चला रहा था। एलिय्याह उसके पास गया और अपना कपड़ा उसके चारों ओर डाल दिया। तब एलीशा अपने बैलों को छोड़कर एलिय्याह के पीछे दौड़ा। मुझे अपने पिता और माँ को अलविदा कहने दो, उसने कहा, और फिर मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। एलीशा ने अपने बैलों का जुआ उठाया और उनका वध किया। उसने मांस पकाने के लिए जुताई के उपकरण जला दिए और उसे लोगों को दे दिया और उन्होंने खाया। तब वह एलिय्याह के पीछे चलने को निकला और उसका सेवक बन गया। अब अराम के राजा बेन-हदद ने अपनी सारी सेना इकट्ठी कर ली। वह 32 राजाओं और उनके घोड़ों और रथों को साथ लेकर चढ़ गया और सामरिया को घेर लिया और उस पर आक्रमण किया। और उसने नगर में इसराइल के राजा अहाब के पास दूत भेजकर कहलाया कि बेन-हदद यूं कहता है कि तेरी चांदी और सोना मेरा है और तेरी जो अच्छी से अच्छी स्त्रियां और लड़के हों वे भी मेरे हैं। इसराइल के राजा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु राजा, जैसा आप कहते हैं वैसा ही होगा। मैं और मेरा सब कुछ तुम्हारा है। दूतों ने फिर आकर कहा, बेन-हदद यह कहता है, मैंने तुमसे चांदी और सोना तुम्हारी पत्नियों और तुम्हारे बच्चों को मांगने के लिए भेजा था। लेकिन कल इसी समय मैं भेजने जा रहा हूँ मेरे अधिकारी तेरे महल और तेरे हाकिमों के घरों की तलाशी लें, और जो कुछ तेरी कीमत है उसे छीन लेंगे। अहाब ने जवाब दिया कि मैं इस मांग को पूरा नहीं कर सकता। बेनहदद ने कहा कि हमला करने के लिए तैयार हो जाओ। इसी बीच एक नबी इसराइल के राजा अहाब के पास आया और घोषणा की, यहोवा यों कहता है, क्या तुम इस विशाल सेना को देखते हो? मैं आज इसे तेरे हाथ में सौंप दूंगा और तब तू जान लेगा कि मैं यहोवा हूं। लेकिन यह करेगा कौन? अहाब से पूछा। भविष्यवक्ता ने उत्तर दिया, प्रभु यही कहते हैं, प्रांतीय कमांडरों के युवा अधिकारी ऐसा करेंगे। अहाब ने प्रांतीय कमांडरों के युवा अधिकारियों 232 पुरुषों को बुलाया। तब उसने शेष इसराइलियों को, जो सब मिलाकर 7,000 थे, इकट्ठा किया। वे दोपहर के समय निकले, जबकि बेनहदद और 32 राजाओं ने प्रांतीय कमांडरों के युवा अधिकारियों के साथ मिलकर अपने पीछे सेना के साथ शहर से बाहर मार्च किया और प्रत्येक ने अपने प्रतिद्वंद्वी को मार डाला। इस पर अरामी और इसराइली उनका पीछा करते हुए भाग गए, परंतु अराम का राजा बेनहदद अपने कुछ सवारों समेत घोड़े पर चढ़कर भाग निकला। इसराइल के राजा ने आगे बढ़कर घोड़ों और रथों पर कब्जा कर लिया और अरामियों को भारी नुकसान पहुंचाया। अगले वसंत में बेनहदद ने अरामियों को इकट्ठा किया और इसराइल से लड़ने के लिए अपेक तक गया। जब इसराइली भी इकट्ठे हुए और उन्हें भोजन वस्तु दी गई, तब वे उनका सामना करने के लिए निकले। इसराइलियों ने बकरियों के दो छोटे झुंडों के समान उनके सामने डेरे डाले और अरामियों ने देहात को घेर लिया। परमेश्वर के जन ने आकर इसराइल के राजा से कहा, यहोवा यों कहता है, अरामी लोग सोचते हैं कि यहोवा पहाड़ों का देवता है न कि घाटियों का, इसलिए मैं इस विशाल सेना को तेरे हाथ में कर दूंगा और तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। इसराइलियों ने एक ही दिन में अरामी पैदल सैनिकों को 100,000 मार डाला। उनमें से बाकी अपेक शहर में भाग गए, जहां दीवार उनमें से 27,000 पर गिर गई, और बेनहदद नगर में भाग गया और एक भीतरी कमरे में छिप गया। उसके हाकिमों ने उससे कहा, सुन, हमने सुना है कि इसराइल के घराने के राजा दयालु हैं। आओ, हम कमर में टाट और सिर पर रस्सियां बांधे हुए इसराइल के राजा के पास चलें। शायद वह तुम्हारी जान बख्श देगा। वे कमर में टाट और सिर में रस्सियां बांधे हुए इसराइल के राजा के पास जाकर कहने लगे, तेरा दास बेनहदद कहता है, मुझे जीवित रहने दे। राजा ने उत्तर दिया, क्या वह अभी भी जीवित है? वह मेरा भाई है, एक संधि के आधार। पर अहाब ने बेनहदद को आजाद कर दिया और उसे जाने दिया। संकलनकर्ता की टिप्पणी, ईश्वर के शत्रु के साथ कभी संधि न करें और न ही सत्य का त्याग करें। टिप्पणी समाप्त करें।